श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रणीत श्री भक्ति रसामृत सिंधु भगवत भक्ति भेद निरूपक पूर्व विभाग प्रथम लहरी सामान्य भक्ति ही अखिल रसामृत मूर्ति ही प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली ही तारका पाली ही कलित श्यामा ललितः राधा प्रेयान विधुर जयति अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुद्ध रुचि तारका पाली अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति अखिल रसामृत मूर्ति प्रसिमर रुचि रुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति आप अपना ग्रंथ खोलेंगे उसमें सबसे पहला भूमिका में शब्द है मंगलाचरण। मंगलाचरण कितना शब्द है इसमें? दो। कौन कौन? मंगल और आचरण। क्या अर्थ होगा? मंगल आचरण, इसका अर्थ क्या होगा?
इसका प्रयास करने से जीवन में मंगल आ जाए, जीवन में सुविधा आ जाए।
अच्छा, हाँ बोलिए।
आचरण करने वाले का मंगल होता है।
मंगल आचरण, आचरण मतलब कुछ व्यवहार करना, कृत्य करना। मंगल जो हमारे यात्रा के अनुकूल हो। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ना है, ऐसे मूल से चलेंगे। तो मंगी गतौ, हमारा जो डेस्टिनेशन है, गति है, उसको प्राप्त करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ आचरण किया जाए, कुछ कृत्य किया जाए, तो उसको मंगलाचरण कहा जाता है। कुछ शुभ क्रिया करना, मंगलाचरण का अर्थ है कुछ शुभ क्रिया करना। ग्रंथ लेखन में यह परंपरा है कि लेखक मंगलाचरण करता है। कोई भी आप ग्रंथ देखेंगे, श्रीमद् भागवतम देखिए, चैतन्य चरितामृत देखिए, और इसके प्रारंभ में मंगलाचरण है। तो यद्यपि ये भक्ति रसामृत सिंधु अपने आप में परम मंगल है, लेकिन फिर भी परंपरा के निर्वाह के लिए मंगलाचरण रूप गोस्वामी कर रहे हैं। ये भी मंगल आचरण शुभ कृत्य करना है तो अनंत प्रकार का हो सकता है। वो कौन सा शुभ कृत्य किया जाता है मंगलाचरण में? और इस विषय में चैतन्य चरितामृत आदर्श है। वे कह रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ग्रंथे आरंभ करी मंगलाचरण, ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण कर रहे हैं। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण, गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करना यही आचरण है। और गुरु का स्मरण कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो मंगलप्रद है। तो गुरु वैष्णव भगवान तीन का स्मरण करना ये मंगलाचरण है। तीने स्मरणे है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुराण। तीन का स्मरण करते हैं तो कार्य में कोई बाधा आने वाला है तो वह समाप्त हो जाता है। देखिए गणेश जी की लगता है कि जिम्मेवारी ही दी गई है कि वे कुछ बाधा डालते ही हैं। समुद्र मंथन हो रहा था तो विलोक्य विघ्नेश गतिम तदीश्वर, वो लोग कितना परिश्रम करके मंदराचल पर्वत लाए और क्षीर समुद्र में डाले, और डाले तो नीचे जाने लगा, उनको लगा कि अब डूब जाएगा। तो ध्रियमाणों पे बल भी, वो बड़े बड़े शक्तिशाली देवता थे, असुर थे, वो सब पकड़ रहे थे, लेकिन नपाम विसर वो पानी में डूब गया। अब तो बड़ा निराश हुए, फिर भगवान का स्मरण किए तो विलोक्य विघ्नेश गतिम तदीश्वर, भगवान समझ गए कि ये तो विघ्न के देवता का कृत्य है। तो तदीश्वर भगवान तो उनके भी ईश्वर हैं। अब कुछ निषेध नहीं किए, उनका काम ही है विघ्न डालना, तो क्यों निषेध करें, वही जिम्मेवारी ही दिए हैं। तब वे कक्षप रूप धारण किए और उसको उठा ली। तो विघ्न की संभावना होती है, तो कह रहे कि तीने स्मरण है विघ्न विनाशन, गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण करते हैं तो विघ्न समाप्त हो जाता है। और अनायासे है निज वांछित पूरण, और बिना बहुत प्रयास के ही हमारा जो लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति हो जाती है। से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार वस्तु निर्देश आ आशीर्वाद आर नमस्कार। लेकिन एक परंपरा है ग्रंथ लेखन के प्रारंभ में कि मंगलाचरण करते हैं, गुरु वैष्णव भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और उसी क्रम में ग्रंथ का क्या प्रतिपाद्य विषय होगा इसका भी उल्लेख कर देते हैं। और नमस्कार तो करते ही हैं, इसके साथ अपने श्रोताओं को आशीर्वाद भी देते हैं, उत्साहित करते हैं। और इस विषय में श्रीमद् भागवतम आदर्श है, मॉडल यही है। आप श्रीमद् भागवतम के तीन श्लोक पढ़ेंगे तो तीनों चीज वहां प्राप्त हो जाता है। तो मंगलाचरण का यह एक स्वरूप है, नमस्कार करते हैं भगवान को, गुरु को, वैष्णव को, लेकिन इसी क्रम में हमारे ग्रंथ का क्या प्रतिपाद्य विषय होगा, हम क्या बोलने जा रहे हैं इसको भी बतला देते हैं। तो अब है मंगलाचरण का कुछ स्वरूप समझ में आ रहा है, कोई कठिनाई होगी इस विषय में तो कभी अवसर पा करके पूछ लीजिएगा। कल केशव कह रहा था कि प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, पैसा कहे को जमा किया, प्रश्न ही नहीं पूछ सकते हो तो लेकिन प्रश्न का सिस्टम है कि कागज आप लोगों के पास जाएगा, उसी पर लिख दीजिए, बहुत आवश्यक हो तो कभी पूछ सकते हैं। लेकिन इतना विवेक रखना चाहिए कि हमारे प्रश्न से अब क्लास में बाधा न पड़े। प्रश्न होता है किसी विषय को स्पष्ट करने के लिए। हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का मंगलाचरण। तो श्लोक के आप लोग आवृत्ति के फिर से एक बार बोल लीजिए, सब लोग साथ में बोलिए। अखिल रसामृत मूर्ति एक साथ तो नहीं बोले तो आपके समक्ष अनुवाद भी है इसका। मुख्य वाक्य है विधुर जयति। जयति का क्या अर्थ होगा? ये जो आप जय बोलते हैं ना, यही जयति है। उत्कर्षेण वर्तते। जय का अर्थ होता है जिसका उत्कर्ष हो। तो जय और नमस्कार का मैसेज एक है। किसी को प्रणाम कीजिए या उसका जय बोलिए, उसका मैसेज एक होता है। जय बोलने का अर्थ है कि उसके अधीनता हम स्वीकार कर रहे हैं, और प्रणति का भी यही अर्थ होता है। तो कई एक जगह जय जयति शब्द है तो नमस्कार के ही अर्थ में लेना होता है। और इसमें मूल वाक्य है विधुर जयति। विधु का जय जयकार हो, या विधु का स्थान सबसे ऊंचा है। ये विधु कौन है? विधु मतलब चंद्रमा। बहुत प्रसिद्ध अर्थ है विधु बदनी सब भांत सवारी, कैसे बसन बिन सोहन नारी। विधु बदनी चंद्रमुखी, तो विधु का अर्थ चंद्रमा होता है। लेकिन डिक्शनरी में देखेंगे तो और भी मीनिंग है। विधु श्रीवत्स लांछन, जो संस्कृत का प्रसिद्ध कोश है, तो उसमें देखेंगे तो विधु का एक अर्थ है श्रीवत्स लांछन, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, तो उसको विधु कहा जाएगा। तो इससे किसका अर्थ निकल रहा है? विधु मतलब विष्णु। श्रीवत्स चिन्ह है तो भगवान विष्णु। तो भगवान के कई एक स्वरूप को इसमें ग्रहण करेंगे, लेकिन और इसको स्पष्ट करें, वसुदेव अस्य जनकः श्रीवत्स लांछन, तो कई एक स्वरूप में हो सकता है कि वसुदेव इनके पिता हैं, तब श्री कृष्ण। तो विधु का अर्थ श्री कृष्ण भी होगा और विधु का अर्थ चंद्रमा भी होगा। भाई शब्द तो यहां शब्द ही है, तो जो शब्द है जो अर्थ बनता है उसके अनुसार अर्थ घटित किया जाएगा। तो पहले किस अर्थ को लिया जाए, चंद्रमा के कि कृष्ण का? आए बोलिए जोर से, कृष्ण का। ठीक है। तो अखिल रसामृत मूर्ति, जो अखिल रस के मूर्ति स्वरूप है, जो अखिल रसों के मूर्तिमान स्वरूप है, विधुर जयति, उस विधु का जय जयकार हो। अखिल रसामृत मूर्ति, रस से। अब कल हम लोग रस से की बात किए थे, वो तो दूसरे अर्थ में था। आप साहित्य में या माधुर्य साहित्य में जब रस की बात करेंगे तो 12 रस प्रसिद्ध है, 5 मुख्य है और सात गौड़ है। वो तो पांच मुख्य रसों में से एक दो रस का नाम आप लोग बतलाइए, कोई शांत रस, तो क्रम से बतलाओ। माधुर्य, ठीक, ये पांच सब सुन लिए ना, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये मुख्य रस हैं। लेकिन सात गौड़ रस है, उसका नाम बोलिए। ठीक, ते बारह रस है, तो चाहे वो मुख्य रस हो या गौड़ रस हो, श्री कृष्ण में सब है। अखिल रसामृत मूर्ति, उनके स्वरूप में सब रस है। इसको चैतन्य चरितामृत में इसको गिना गया है। जब भक्ति रस रूप हो जाती है तो उसका वर्णन, उसके वर्णन के क्रम में चैतन्य महाप्रभु बोले हैं मध्य लीला के 19वें अध्याय में, शांत दास सख्य वात्सल मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य, यही पंच प्रधान। हास्याद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स भय पंचविध भक्ते गौड़ सप्त रस है। ते बारह रस है, तो कह रहे हैं कि अखिल रसामृत मूर्ति। और विशेषण क्या दे रहे हैं कि प्रसिमर रुचिरुद्ध तार का पाली। प्रसिमर मतलब जो फैल रहा है, प्रसिमर मतलब फैलने वाला, और रुचि मतलब कांति, रुचि मतलब कांति। तो रुद्ध तार का पाली, अपने फैलते हुए कांति से जो तारका और पाली को अपने अधीन कर लिए। ये तारका और पाली ये कौन है? ये गोपियों का नाम है, ठीक। तारका और पाली गोपियों का नाम है, तो तारका और पाली को अपने सौंदर्य से अभिभूत कर लिए, अवरुद्ध कर लिए। और कलित श्यामा ललित, और श्यामा और ललिता को भी आत्मसात कर लिए। इस श्यामा और ललिता ये कौन है? आए श्यामा राधा रानी, श्यामा ललिता ये कौन है? नहीं, ये सखी ही है, ये भी सखी ही है। लेकिन पहले दो का नाम रखे और फिर दो का रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अस्तर के अनुसार सखी सब हैं, लेकिन सखियों में भी कुछ विभाजन है, सखियों का भी विभाजन है। वो विभाजन के विषय में कोई आइडिया दीजिए, कैसे विभाजन है? चंद्रावली के साथ के, ठीक। तो एक राधा रानी का ग्रुप हो गया और एक चंद्रावली का, तो ऐसे ही विभाजन किया गया है कि राधा रानी के साथ के और चंद्रावली के साथ के, इसका विभाजन ठीक फैक्ट यही है, लेकिन इसको टेक्निकली स्वपक्षा और विपक्षा। एक दो ग्रुप है, राधा रानी का और चंद्रावली का, और दोनों में ईर्ष्या का भाव है। तो एक पक्ष हुआ, राधा रानी पक्ष हुई, तो चंद्रावली विपक्ष हुई। तो सखियों का विभाजन करते समय पक्ष या सुहित पक्ष, नहीं स्वपक्ष, सुहित पक्ष, विपक्ष, तटस्थ और विपक्ष, तो यहां जो नाम ले रहे हैं ग्रुप के अनुसार, पहले दो सखियों का नाम लिए वे तटस्थ ग्रुप की हैं, तारका और पाली, वे तटस्थ हैं। ये तटस्थ का क्या अर्थ है? आए नहीं, यहां जो नाम दिया रहा है तारका और पाली, तो ये तटस्थ ग्रुप की सखियां है। ठीक है, अच्छा ठीक है, वो तो न्यूट्रल है। और स्वपक्ष वालों का क्या व्यवहार है? उनको तो तटस्था कह दिया गया कि उनको सुख दुख से मतलब नहीं है, लेकिन स्वपक्षा का क्या मतलब हुआ?
तो वो कहते हैं कृष्ण हमारे,
हमारे
देखिए, सखियों का ग्रुप है तो एक सुहित पक्ष है। ये विभाजन क्यों किया गया है? ये सखियों को कई एक ग्रुप में क्यों डाल दे? क्योंकि उनका जो कृष्ण के प्रति स्नेह है उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो स्नेह के आधार पर पहले एक विभाजन किया गया है। एक को कहा जाता है मधु स्नेहा और एक को घृत स्नेहा, उस स्नेह के आधार पर अलग विभाजन है। घृत स्नेहा और मधुर स्नेहा, इसमें क्या अंतर है? मान लीजिए कि कोई घी से कुछ मिठाई बनाए या कोई खाद्य पदार्थ घी से बनाए और एक मधु से बनाए, दोनों में कुछ अंतर होता है? घी वाला भी अच्छा ही होता है, लेकिन थोड़ा चीनी डाल दीजिए तब वो अच्छा लगेगा, लेकिन मधु तो अपने आप में आस्वादनीय है। तो सखियों का विभाजन स्नेह के आधार पर किया गया है, स्नेह में तारतम्य है, लेकिन फिर उसी स्नेह को अब व्यवहारिक रूप में सुहित पक्ष, स्वपक्ष और तटस्थ ऐसे भेद किया गया। तो एक ग्रुप है क्यों? राधा रानी के भावना जैसी उनकी भावना है, लगभग वैसी है। राधा रानी को ईर्ष्या हो रही है चंद्रावली से, तो उनको भी ईर्ष्या हो जाएगी। अच्छा, स्वपक्ष का आशय यह है कि जो प्रिया प्रियतम के मिलन में सहायता करें, राधा कृष्ण के मिलन में सहायता करते हैं, इष्ट साधक और अनिष्ट निवारण यह उनका कार्य होता है। कभी कभी प्रिया प्रियतम एक साथ मिले हैं और तब तक कोई बाधा आ गई, तो जो स्वपक्षा गोपियां हैं वो कोई न कोई उपाय लगा करके उस बाधा को दूर करना चाहती है। समझ रहे हैं विष्णु मधुसूदन, ये टेक्निकली अंतर समझना चाहिए। इस स्वपक्षा का मुख्य कार्य है इष्ट साधन और अनिष्ट वारण, तो उदाहरण दिया गया है कि एक बार राधा रानी कृष्ण के साथ थी और तब तक जटिला आ गई और वो देख रही है कि हमारी वधु पतो कृष्ण के साथ है, वो तो बहुत बहुत उग्र हो रही थी और तब तक कोई सखी जा करके कह रहा, अरे वो मधुमंगल है, राधा रानी का वस्त्र ले लिया है, तुम्हारी आंख से दिख नहीं रहा है अब, ऐसे देखते देखते तो उसको विश्वास हो गया। तो ये कोई विघ्न आ रहा है तो उसका निवारण करती है, लेकिन जो चंद्रावली पक्ष के स्वपक्षा है तो राधा रानी के दृष्टि से वो तटस्था हो जाती है। अब उनको राधा रानी में ईर्ष्या हो रहा है या प्रेम हो रहा है उससे बहुत प्रभावित नहीं होती है। वो एक ग्रुप है कि राधा रानी के भावना से लगभग पूरा पूरा प्रभावित हो जाता है और एक ग्रुप है कि राधा रानी से प्रेम है लेकिन अब इसके भावना से वे लोग नहीं प्रभावित होते हैं, मतलब इस हर ईर्ष्या है तो उनके मन में ईर्ष्या नहीं होता है, इस दृष्टि से उनको तटस्था कहा गया। ऐसे तटस्था कह देने से तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आसक्ति ही नहीं है, वो आसक्ति का अभाव नहीं है लेकिन राधा रानी की जो भावना है ईर्ष्या इत्यादि उससे अप्रभावित है, तो इस अर्थ में उनको तटस्था कहा जाता है। तो गोपियों का ग्रेडेशन है, जो तटस्था गोपी हैं उनसे उत्कृष्ट है स्वपक्षा गोपी। तो यह कृष्ण का उत्कर्ष दिखा रहे हैं, तारकापाली को अपने वशीभूत किए हैं, यह भी कृष्ण का उत्कर्ष है जयति, लेकिन उससे अधिक उत्कर्ष है कि कलित श्यामा ललिता, जो श्यामा और ललिता को भी आत्मसात कर लिए और उससे भी उत्कर्ष है राधा प्रेया विधुर जयति, जो राधा रानी के अतिशय प्रिय है। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि तटस्था सखी में दो सखियों का नाम लिए और स्वपक्षा सखियों में भी दो सखी का नाम लिए, लेकिन अब राधा रानी को भी जोड़ी में रखना चाहिए लेकिन राधा रानी के साथ किसी को नहीं रखे, अब सिंगल सीट दे दिए। इसका आशय है कि राधा रानी के बराबर कोई है ही नहीं, अब कौन उस पेयर में डाले, किसको डाले। तो कह रहे हैं कि जो तारका और पाली को अपने सौंदर्य से वशीभूत किए हैं, श्यामा और ललिता को आत्मसात किए हैं और राधा रानी को जो अतिशय प्रिय हैं वह विधुर जयति, उन्हीं का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, सबसे ऊपर स्थान है। यह उत्कर्ष बतला कृष्ण का, कृष्ण के लिए शब्द विधु दे रहा है। अब संस्कृत से व्युत्पत्ति से अर्थ इसका करें तो विधु में दो अक्षर आ रहा है ना, बी और धू, तो बी मतलब विशेष रूप से और धू मतलब धुनोती। आप लोग कभी ये क्रोध की भाषा सुने हैं, अरे आऊंगा तो बहुत धुन दूंगा, कभी ऐसे आप लोग सुने हैं, रुआ जैसा धुनाई कर दूंगा, समझ रहे हैं कुछ सेंस आ रहा है। तो धुनोति सर्व दुखम, विधुनोति सर्व दुखम या विदधाति सर्व सुखम, ये विधान के अर्थ में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो विधु का अर्थ विधुनोति सर्व दुखम, विधुनोति खंडयति सर्व दुखम, जो सारे दुख को खंडित कर दे, सबको समाप्त कर दे, तो उसको कहा जाएगा विधु। या सब प्रकार के सुख का विधान करे तो उसको कहा जाएगा विधु, या सबको अतिक्रमित करके सबके ऊपर जो है उसको कहा जाएगा विधु। तो विधु शब्द से स्पष्ट श्री कृष्ण का बोध हो रहा है, जो कि जो विशेषण है तो उससे स्पष्ट पता चल रहा है यह कृष्ण का वर्णन है। और कहाँ के कृष्ण का? कलित ललित, कलित श्यामा ललित है और रुद्ध तारका पाली। और कृष्ण भी कई एक जगह के है ना, द्वारका के कृष्ण है, मथुरा के कृष्ण है। तो इसमें किस कृष्ण का वर्णन किया जा रहा है, द्वारका के कि मथुरा का? वृंदावन के। इसमें वृंदावन के कृष्ण का, वृंदावन बिहारी का वर्णन किया जा रहा है। तो ग्रंथ अपने आप में मंगल रूप है, क्योंकि भगवान ही सब मंगल के उत्स हैं। लेकिन फिर भी सदाचार के निर्वाह के लिए ये मंगलाचरण कर रहे हैं। जब चंद्रमा के अर्थ में लेने पर क्या अर्थ होगा, विधु को चंद्रमा ग्रहण कीजिए, विधु मतलब चंद्रमा। तब अखिल रसामृत मूर्ति, चाहे तीता हो, मीठा हो, खाटा हो, ये सब रस चंद्रमा से आता है। पुष्णामी चौषधि सर्वे सोमो भूत्वा रसात्मक, यदि चंद्रमा का किरण न पड़े तो सब्जी के स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा। सब्जी के स्वाद में अंतर हो रहा है, फल के स्वाद में अंतर हो रहा है, अनाज के स्वाद में अंतर हो रहा है, तो रस कहाँ से आ रहा है? सब चंद्रमा के किरण से। तो इस अर्थ में अखिल रसामृत मूर्ति और प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, और चंद्रमा का किरण फैल रहा है। तो अब तारका पाली, पाली मतलब समूह, के ताराओं के समूह का जो किरण है तो वह फीका हो गया। तो प्रसिमर रुचिरुद्ध तारका पाली, जो अपने फैलती हुई किरण से तारका समूह के, तारा समूह के प्रकाश को फीका कर रहे हैं। और कलित श्यामा ललित, श्यामा मतलब रात्रि, जो रात्रि को भी ललित सुहावना बना रहे हैं। और राधा प्रियान, जो राधा के प्रिय हैं, राधा मतलब अनुराधा, मतलब विशाखा। ये सब नक्षत्र का नाम है, गोपी में मत जाइए। अब यहाँ चंद्रमा है तो चंद्रमा का संबंध तो नक्षत्रों से है ना। तो राधा प्रियान मतलब जिसको विशाखा नक्षत्र बहुत प्रिय है। विशाखा नक्षत्र चंद्रमा को इतना प्रिय है कि एक महीना उसी के पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। उसी महीना को वैशाख कहा जाता है। वैशाख है, वैशाख महीना विशाखा के नाम से पड़ा है। उस समय चंद्रमा विशाखा नक्षत्र का अनुगमन करते हैं। तो विशाखा नक्षत्र जिनको बहुत प्रिय है, विधुर जयति, उस चंद्रमा का जय जयकार। अरे भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे हैं, ये चंद्रमा का जय जयकार करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक प्रश्न होगा ना कि रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ लिख रहे हैं और चंद्रमा के जय जयकार करने की क्या जरूरत? जरूरत है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान के तरफ उनकी बुद्धि जा ही नहीं सकती, भगवान का तो कुछ ज्ञान है नहीं, तो अब भगवान का तो कुछ वर्णन करने पर समझ में नहीं आएगा। तो जो संसार में देख रहे हैं, व्यवहार में देख रहे हैं, तो उसका वर्णन करने से कुछ कुछ अंदाज कर सकते हैं कि ऐसा ही उधर भी व्यवहार होगा। समझ रहे हैं इस सिद्धांत को? आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसी में अष्टविष्ट रूप का वर्णन है। ये पहाड़ भगवान की हड्डी है तो समुद्र ये है वो है, ये ऐसा क्यों कर दिया गया है? जब तक भगवान में भक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक चिंतन के लिए एक विषय दे दिया गया। कम से कम मन में आवे तो कि भगवान भी कुछ है। कुछ लोग इतने कर्म से आक्षिप्त है, उनका मन इतना चंचल है कि भगवान के रूप पर टिक ही नहीं सकता, तो भगवान के मन तक रूप नहीं जा सकता, तो संसार में एक भगवान की कल्पना की जाती है कि कुछ तो भगवान की धारणा बने, कुछ फ्रेमवर्क तैयार हो। तो उसी तरह अब गोपियों के साथ कैसा प्रेम है, क्या व्यवहार है, हम लोगों को क्या समझदारी है, तो चंद्रमा का व्यवहार देने से एक आइडिया मन में आ सकता है। तो इसलिए ये चंद्रमा पर भी घटित होगा। अब आगे कह रहे हैं कि हृदय जस्य प्रेरणया प्रवर्ति प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। जो हृदय में प्रेरणा दिए इस ग्रंथ के लिखने के लिए, तो बराक रूपोपि, बराक मतलब तुच्छ, मैं तो एकदम तुच्छ हूं, इनसिग्निफिकेंट हूं, लेकिन फिर भी जिसके प्रेरणा से इस महान कार्य में प्रवर्तित हुआ, तो उस चैतन्य देव के चरणों की मैं वंदना करता। रूप गोस्वामी अपने विषय में क्या कह रहे हैं कि मैं अतिशय तुच्छ हूं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी प्रचारक है तो उसका यही मनोभाव होना चाहिए। ऐसा नहीं उसको अभिमान हो कि हम तो अच्छे प्रीचर हैं, बड़े प्रीचर हैं। उसके मन में यही भावना होनी चाहिए कि हम में कुछ योग्यता नहीं है, हम तो आचार्यों के चरण चिन्ह का अनुसरण कर रहे हैं, उनकी कृपा से जो हो जाए। रूप गोस्वामी यद्यपि बहुत श्रेष्ठ हैं, कई एक भाषा के विद्वान हैं, लेकिन अपने लिए क्या कह रहे हैं, बराक रूप, एकदम तुच्छ है। बराक मतलब तुच्छ, तो दैन्य में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अब सरस्वती जी तो इसको नहीं स्वीकार करेंगे। अब दूसरे ढंग से अर्थ किया जाए तो बरम श्रेष्ठम आ सम्यक कायति शब्दायते इति बराक, जो खूब अच्छा से डिजाइन दे, वर्णन करे, तो उसको बराक कहा जाएगा। सारस्वत अर्थ है, लेकिन रूप गोस्वामी अपने तरफ से यही कह रहे हैं कि मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ, बराक हूँ, अक्षयहीन हूँ, लेकिन जिसकी प्रेरणा से मैं ग्रंथ लेखन में प्रवृत्त हुआ हूँ, तो उस चैतन्य देव के पद कमल की मैं वंदना करता हूँ। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनो मदीशस्य भक्ति रसामृत सिंधु भवति सदायम प्रमोदाय। आगे वे कामना कर रहे हैं कि यह भक्ति रसामृत सिंधु भगवान का विश्राम मंदिर बने, यह सनातन गोस्वामी को सनातन गोस्वामी का विश्राम मंदिर बने। विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनुर मदीशस्य भक्ति रसामृत सिंधु भवति सदायं प्रमोदाय। मंगलाचरण के क्रम में हम कहे कि अपने इष्ट को, गुरु को, वैष्णव को नमस्कार करते हैं, और उसी क्रम में अपने विषय वस्तु का भी संकेत कर देते हैं, और एक मंगलाचरण का रूप है कि आशीर्वाद देते हैं या चाहते हैं, दोनों पक्ष है। अपने श्रोताओं को आशीर्वाद देते हैं और कोई कोई आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो रूप गोस्वामी तो एक तरह से आशीर्वाद की कामना ही कर रहे, क्या कामना कर रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है वो सनातन तनो मदीशस्य, हमारे जो इष्ट हैं स्वामी हैं और उनके विषय में क्या है, सनातन तनु, मतलब जिनका श्री विग्रह कभी खंडित नहीं होता है, इटर्नल है, तो उनके विश्राम मंदिर के रूप में यह होवे। क्या भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु वह भगवान का विश्राम मंदिर बने। अरे समुद्र ही बचा है विश्राम करने के लिए, भगवान तो समुद्र में ही विश्राम करते ही हैं, तो क्षीर समुद्र में विश्राम करते हैं ना, कि जैसे क्षीर समुद्र आपके विश्राम का स्थल है, स्थान है, वैसे यह समुद्र भी, यह भी सिंधु ही है ना, यह भी विश्राम स्थल बने, इसमें आप विश्राम करें। लेकिन शब्द क्या दे रहे हैं, सनातन तनो मदीशस्य। अब इसका दो अर्थ होगा, ये भगवान के लिए भी होगा और सनातन गोस्वामी के लिए भी। गुरु भी भगवान का एक रूप ही होता है, मदीशस्य सनातन तनो, हमारे स्वामी जो सनातन गोस्वामी के रूप में है, शरीर में है, तो उनका विश्राम मंदिर यह बने, मतलब इसमें वे सुख अनुभव करें। कुछ कठिनाई लग रही है, दो अर्थ होगा भगवान के लिए, अब भगवान मदीशस्य हमारे स्वामी का इष्ट का, तो सनातन तन उनका विशेषण हो जाएगा जिनका शरीर नित्य है। भगवान का शरीर तो हम लोग जैसा नहीं है ना, लेकिन श्लेष से ये भगवान के लिए भी कह रहे हैं और सनातन गोस्वामी के लिए भी कह रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधौ चरत परिभूत काल जाल भी यह भक्त बक मकरान अशीलित मुक्ति नदी का नमस्यामी। वो अपने इष्ट को नमस्कार किए, इष्ट कौन कौन है, वृंदावन बिहारी चैतन्य देव, दो श्लोक में अलग अलग किए, अपने गुरु को नमस्कार किए सनातन गोस्वामी को, अब कौन बच गया तीन में, मंगलाचरण में तीन का स्मरण करते हैं, किसका किसका, तो गुरु वैष्णव भगवान, तो भगवान और गुरु तो हो गए, कौन बचा, तब इस श्लोक में वैष्णव को नमस्कार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधौ चरत परिभूत काल जाल भी भक्त मकरान अशीलित मुक्ति नदी का नमस्यामि, नमस्यामि हम नमस्कार कर रहे हैं। ये संस्कृत के शब्द से बतलाइए, संस्कृत के शब्द को बतलाइए, किसको नमस्कार कर रहे हैं, सुशील श्लोक देख करके बतलाओ, नमस्यामि इस क्रिया का कर्म क्या है, कर्म पद बोलो, नमस्यामि, तो श्लोक में देख करके बतले किसको नमस्कार कर रहे हैं, आए भक्त मकरान, भक्त मकरान, मकर मतलब मछली। देखिए इस ग्रंथ में अनुवाद किया गया है मगर, पहले मगर मच्छ किया गया था, सुधार करके मगर किया गया है, लेकिन जो हिंदी से अभ्यस्त हैं तो उनके मन में मगर का दूसरा ही रूप आ जाता है, सोस घड़ियाल मगर ये सब होते हैं ना, लेकिन संस्कृत में अस्पष्ट मत्स्यराज। और श्रील प्रभुपाद जी सार्क लिखे हैं, सार्क तो मगर नहीं होते हैं ना, मछली की जाती है ना, सार्क डॉल्फिन ये सब मछली की जातियां हैं ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। संस्कृत से भक्त मकरान, मकर का अर्थ मत्स्य राजा, जो बड़े बड़े मछलियां हैं हम भक्त मछलियों को नमस्कार कर रहे हैं। मछली भक्त को नमस्कार कर रहे हैं, आदमी भक्त को नहीं। और ये मछली भक्त के और क्या क्या विशेषण दे रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु चरत, जो भक्ति रसामृत समुद्र में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। और परिभूत काल जाल भी, ये काल रूप जाल के भय को पराजित कर दिए, उससे मुक्त हो गए हैं। तो ऐसे भक्त और असीलित मुक्ति नदी का, जो मुक्ति रूप नदी का अनादर करते हैं, ऐसे भक्त मकर को मैं नमस्कार कर रहा। मछली भक्त के विषय में तीन बात कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं एक एक करके बतलाइए। जो भक्ति रसामृत सिंधु चरत, जो भक्ति रसामृत रूप समुद्र में खूब विहार कर रहे हैं। एक्चुअली पता नहीं आप लोग मछलियों को देखे होंगे, मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन अभी मैं मॉरिशस गया था तो वहां एक भक्त थे, मैं उनसे पूछ रहा था कि वो भीतर भी जाते हो फायर फाइटर रेस्क्यू करने के, कोई कोई संकट में है तो मुक्त करना उनका काम है। तो कहते कि हाँ भीतर समुद्र में हम लोग गए थे, वहाँ शार्क डॉल्फिन बड़ी बड़ी मछलियों के साथ तैरे थी। तो मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और समुद्र में वो निर्भय विहार करती है। छोटा तालाब है तो उसमें उनको जाल का भय है, समुद्र में कोई जाल डाल करके नहीं फंसाएगा। तो एक तो कह रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में जो विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि परिभूत काल जाल भी, जिनको एक काल रूप जाल का भय नहीं है। और एक और चीज उसको बतलाइए, असीलित मुक्ति नदी का, जो मछली समुद्र में है तो अब नदी के तरफ उसकी स्प्रिया नहीं होती है। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु में विहार कर रहे हैं तो मुक्ति के लिए वो कुछ प्रयास नहीं करते हैं, अब उसका अनुशीलन नहीं करते। तो भक्तों के विषय ऐसे भक्तों को नमस्कार कर रहे हैं तो उनको मछली कह रहे हैं, इस अर्थ में कि भक्ति रसामृत सिंधु में विहार कर रहे हैं। और भक्ति रसामृत सिंधु में विहार कर रहे हैं तो उनको जाल काल रूप जाल का भय नहीं है। और जो मुक्ति रूप नदी का अनुशीलन नहीं करते, ऐसे मछली भक्तों को नमस्कार है। अब और प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं कि मीमांसक बड़वाग्ने कठिनामपि कुंठयन नसौ जिह्वाम स्फुरतु सनातन सुचिरम तो भक्ति रसामृताम भवति। खास करके सनातन गोस्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुचिरम स्फुरतु, और समर्पित कर रहे हैं तो भक्ति रसामृताम भवति, जो आपका भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है तो चीर काल तक स्थापित रहे। और इसके विषय में कहें कि मीमांसक बड़वाग्ने कठिनामपि कुंठयन नसु जिह्वाम, कि मीमांसकों के कुतर्क को खंडित करते हुए, उसको दमित करते हुए, और यह भक्ति रसामृत सिंधु चीर काल तक विराजित रहे। अब आप समुद्र के विषय में थोड़ा विचार कीजिए, इस संसार में तीन आग बहुत प्रसिद्ध है, कौन कौन, आए दावानल, जठरानल और बड़वानल। तो पेट के आग को जठरानल कहते हैं, जंगल में जो आग लगी उसको दावानल कहते हैं, समुद्र में एक आग है उसको बड़वानल कहते हैं, बड़वानल। उस समुद्र में आग है लेकिन समुद्र पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है? समुद्र कभी कम हो जाता है, आग उसमें जल रहा है लेकिन फिर भी समुद्र उसको कुंठित करके एक रस विराजमान है। और उसी तरह कह रहे हैं कि मीमांसक, मीमांसक मतलब जो कर्म की प्रधानता देते हैं, जो स्वर्ग की प्रधानता देते हैं, तो वे लोग भक्ति के खिलाफ बोलते रहेंगे। कुंठयन असो जीव कठिनामपि, बहुत कठिन बात बोलते हैं, बहुत कठोर बात बोलते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि उनके तर्क को निरस्त करते हुए भक्ति रसामृत सिंधु चीर काल तक स्थापित रहे, विराजित रहे। जैसे समुद्र अपने अंदर के आग को कुंठित करके चीर काल तक एक रस विराजित, तो उसी तरह मीमांसकों के तर्क को कुंठित करते हुए ये ग्रंथ चीर ताल तक विराजित रहे। इस समुद्र में आग कहां से आ गया, ये जब बड़वानल कहां से आ गया? समुद्र में आग आ गया, आग डाला गया समुद्र में। भृगुवंश में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था और्व। भृगुवंशी ब्राह्मण थे और्व। तो कार्य कार्तवीर्य के पुत्र वो ऋषि को मारने के लिए चले। कार्तवीर्य बहुत शक्तिशाली थे ना, नर्मदा को रोक दिए थे, तो उनके पुत्र और्व ऋषि को मारने के लिए चले। और वे तो बहुत वीर यादव हैं। अब ये ब्राह्मण तो हथियार से तो पार पाएगा नहीं, अब कार्तवीर्य के पुत्र आ रहे हैं मारने के लिए, भृगुवंशी ब्राह्मण तो हथियार से तो पार नहीं पा सकता, तो ये क्या किए कि क्रोध से आग लगा दिए। क्रोध से आग लगा दिए तो मान लीजिए कि आग से कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र तो रुक गए, लेकिन आग तो नहीं रुकी ना, आग तो फैलती जाती है। तो अब सारा संसार दग्ध होने लगा। वे तो अपनी रक्षा के लिए आग लगाए लेकिन प्रभाव पूरे संसार पर चला गया। तो संसार के लोग बड़ा ज्वाला महसूस करने लगे, कष्ट अनुभव करने लगे। तो जा करके भृगुवंशियों की प्रार्थना किए कि भाई आपके कुल के हैं, ये आग लगा दिए तो ठीक नहीं है, अब कुछ सोलूशन देना चाहिए, कुछ समाधान करना चाहिए। तो समाधान दिए कि ठीक है, इस आग को इकट्ठा करके और घोड़ी के मुंह में डाल करके समुद्र में फेंक दीजिए। देखते हैं ना आरती करते समय जो आग रहता है उसको एक लोहा के बर्तन में डाल देते हैं। तो जो संसार में आग फैल गया था वो तो कहे कि इसको घोड़ी के मुख में डाल करके रख करके समुद्र में डाल दीजिए। बड़वा कहते हैं घोड़ी को, ये बड़वानल शब्द है ना, बड़वा मतलब घोड़ी। तो अब यही व्यवस्था की गई कि उसको समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन वो समुद्र में डालने पर भी वो आग शांत नहीं हुआ, उसका ज्वाला निकलता रहता है, सात ज्वाला निकलता है, लेकिन फिर भी समुद्र उसको बैलेंस कर लेता है, उसको कुंठित करता है। ये नाम भी दिया गया है, हम इसको भानु महाराज के किताब से लिए हैं। तो सात ज्वाला है, उसका नाम भी सात आग के ज्वाला का नाम दिया गया है। ज्वाला नहीं, सप्त ज्वाला है, उसका नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधुम्रा, वर्णा और उग्रा। ये सात ज्वाला समुद्र में अभी भी है, लेकिन समुद्र उसको कुंठित करके एक रस बना हुआ है। तो उसी तरह रूप गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से कि आपका यह भक्ति रसामृत सिंधु मीमांसकों के तर्क रूप ज्वाला को कुंठित करते हुए सदा सर्वदा के लिए विराजित रहे। यह मंगलाचरण का क्रम चल रहा है। अब इसके आगे श्लोक है, भक्ति रसस्य प्रस्तुति अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य अज्ञेनापि मया क्रियते सुहृदं प्रमोदाय। हे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति रस की प्रस्तुति मैं सुहृदं प्रमोदाय, भक्तों के हित के लिए, सुहृद जनों के लिए, अपने प्रेमियों के आनंद के लिए कर रहा हूं। और भक्ति रस के प्रस्तुति के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि अखिल जगत मंगल प्रसंगस्य। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, वर्णन तो भक्ति का है लेकिन प्रसंग तो सर्वत्र कृष्ण का है, जो सारे जगत का मंगल करने वाले। ये प्रसंग और प्रस्तुति दो शब्द को सदा सर्वदा के लिए समझ जाइए, जो आपका मुख्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उसको प्रस्तुति कहते हैं। अब उसको पुष्ट करने के लिए जो दूसरा विषय आ जाता है तो उसको प्रसंग कहते हैं। तो प्रस्तुति तो भक्ति रस है लेकिन प्रसंग तो सर्व जगह कृष्ण ही है, और उनके विषय में कह रहे हैं कि अखिल जगत मंगल प्रसंगस्य, वे तो सारे संसार का मंगल करने वाले। तो अज्ञे नापि मया क्रियते सुहृदं प्रमोदाय, मैं तो अज्ञ हूं लेकिन फिर भी अपने मित्रों के आनंद के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा। इसी मॉडल पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ग्रंथ खास करके इस्कान डिवोटी के लिए। रूप गोस्वामी अपने लिए शब्द रहे अज्ञे न, अज्ञ मतलब मूर्ख, जिसको कुछ ज्ञान ही ना हो। लेकिन सरस्वती जी के तरफ से अज्ञ का क्या अर्थ होगा, जिनके समान कोई ज्ञानी ना हो। तो एतस्य भगवत भक्ति रसामृत पयो निधे चत्वारा खलु वक्षन्ते भागा पूर्वादय क्रमा। समुद्र है तो समुद्र को चार भाग में बांटा जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जैसे समुद्र को चार भाग में बांटेंगे तो वैसे इस समुद्र को भी, भक्ति रस समुद्र को चार भाग में, कैसे, पूर्वादय क्रमात्। सबसे पहले पूरब, तो पूरब के बाद क्रम में क्या आएगा, दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, क्रम से बांटना है। तो इस ग्रंथ के चार विभाग हैं, कौन कौन, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग। तत्र पूर्वे विभागेस्मिन् भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरीणाम चतुष्टयम्। अब भाई समुद्र का कोई विभाग कर दीजिए, चाहे पूरब हो पश्चिम हो, तो लहर तो सब जगह आता है ना। तो उसी तरह इस समुद्र में भी पूर्व विभाग में भी लहरी है, दक्षिण विभाग में भी लहरी है, पश्चिम में भी लहरी है और उत्तर विभाग में भी लहरी है। तो पूर्व विभाग का वर्णन दे रहे हैं कि तत्र पूर्वे विभागेस्मिन् भक्ति भेद निरूपके अनुक्रमेण वक्तव्यम लहरी नाम चतुष्टय, इसमें चार लहरी है और ये भक्ति के भेद को बतलाने वाली है। चार लहरी में चार प्रकार से भक्ति के भेद को बतलाया गया है। तो क्या क्या है चार लहरी? आद्या सामान्य भक्ताढ्या, द्वितीया साधनांकिता, भावाफ्रिता तृतीया च तुरियम प्रेम नुरूपका। जो चार लहरी है तो प्रथम लहरी में भक्ति का सामान्य रूप से निरूपण किया गया है, दूसरे लहरी में साधन भक्ति का, तीसरे लहरी में भाव भक्ति का, और चतुर्थ में प्रेम भक्ति का। तो चार प्रकार से इन्हें चार लहरी में भक्ति के भेद को दर्शाया गया है। और प्रथम लहरी में सामान्य रूप से एक बहुत ध्यान देने की बात है, भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चार प्रकार का भक्ति है, सामान्य भक्ति, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भक्ति कितना है? भक्ति का विभाजन तीन, कौन कौन? साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो सामान्य भक्ति क्या हुआ? ये सारे भक्ति का पहले जनरल वे में साधारण रूप में वर्णन किया गया, इसको सामान्य भक्ति कहा गया है। समझ में आ रहा है? जैसे वृंदावन इस्कान, इस्कान वृंदावन, अब इसके बाद उसी में गुरुकुल है, गोशाला है, मंदिर है, भेद करते हैं ना। इस्कान अलग चीज है और गुरुकुल अलग चीज है, गोशाला अलग है, इस्कान से अलग नहीं है ना। तो जैसे पहले कोई इस्कान का परिचय दे रहा है, अब उसी में भेद करने लगे कि ये गोशाला है, ये गुरुकुल है, ये मंदिर है। तो उसी प्रकार प्रथम लहरी में भक्ति का सामान्य रूप से परिचय दिया गया। तो यह कभी भूल नहीं करना चाहिए कि भक्ति को चार भाग में बांटा गया है, सामान्य भक्ति। ये भूल हो जाती है, समझ रहे हमारी बात को? भक्ति का तीन भेद है, लेकिन एक लहरी में तीनों को सामान्य रूप से जनरल वे में वर्णन किया गया है, और दूसरे अध्याय में साधन भक्ति को स्पेसिफिक वे में वर्णन किया गया, अब तीन में उसको विशिष्ट रूप से किया गया है। तो यह भ्रम नहीं करना चाहिए कि भक्ति के चार भेद बतलाए गए। भक्ति के भेद बतलाने के क्रम में चार लहरी है, लहरी चार है भक्ति के भेद बतलाने वाले। भक्ति के भेद कितने हैं? तीन। अब इस विषय में किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। भक्ति के भेद हैं तीन, इनके निरूपण करने वाले अध्याय कितने हैं? चार। आगे पढ़िए, कोई श्लोक पढ़िए, सबके पास श्लोक है, कोई पढ़िए। तत्रादौ सुष्टु वैशिष्ट्यम अस्या कथयितुं स्फुटं लक्षणं क्रियते भक्ति उत्तमाया सतां मतम्। कह रहे हैं कि भक्ति के विशेषता को खूब अच्छा से कहने के लिए, स्पष्ट रूप से कहने के लिए, भक्तों के आचार्यों के मत को लेकर के, सताम मतम, अपने तरफ से नहीं, भक्तों का मत लेकर के पहले उसके लक्षण को बतला रहे, परिभाषा को बतला रहे हैं। और भक्ति के वैशिष्ट को बतलाने के लिए पहले भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं। भक्ति को समझेंगे कि भक्ति का क्या अर्थ है, तभी उसके विशेषता को समझ सकते हैं। नहीं, भक्ति अपने मन से धारणा बना ली है तो वो उस विशेषता पर घटित नहीं होगा ना। कल वो माता जी पूछ रही थी इंदुलेखा, भगवान हम लोगों के समक्ष तो नहीं आ रहे, लेकिन जिस चेतना में आते हैं जैसी उत्कंठा होने पर, तो उस उत्कंठा के लक्षण को भी समझना चाहिए ना। तो भक्ति के वैशिष्ट को बतलाने के लिए भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, उत्तमा भक्ति की। अब क्या परिभाषा है बोलिए, सब लोग एक साथ बोलने का प्रयास कीजिए। फिर से ठीक। तब ये तो सबके परिचित श्लोक है ना। इस श्लोक को तो सब लोग जानते हैं ना, कोई कोई नहीं जानते हैं। कोई जो क्लास में नहीं रहते हैं नियमित, उनको नहीं पता होगा। कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो अपरिचित ही है। फिर से बोलिए, आप लोगों को याद भी करना है श्लोक ना। सीलनम भक्ति ने आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना यह भक्ति। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति, अनुकूल भाव से कृष्णानुशीलन भक्ति है। लेकिन अब एक झगड़ा है, भारी झगड़ा। कृष्णानुशीलनम कितना शब्द इसमें है? नहीं, एक एक व्यक्ति माइक लेकर के पहले संख्या बतलाइए, कितना शब्द है इसमें? तीन, तीन है। कृष्ण अनु शीलनम, तीन है। ठीक, क्या इसको दो भाग में बांटना है? तब कैसे बांटेंगे? तीन शब्द है लेकिन इसको दो भाग में बांटना है। कृष्ण अनुशीलनम, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई विरोध नहीं है? अच्छा ठीक है, आप लोगों को विरोध नहीं है कृष्ण अनुशीलनम, लेकिन हम तो विरोध कर रहे हैं, हमको भाई बांटना होगा, तो हम कहेंगे कृष्णानुशीलनम। तो आप लोगों को क्या इसमें आपत्ति है? हम तीन शब्द को बांट दें, कृष्ण और अनु को एक साथ कृष्णानुशीलनम, तो आप लोगों को आपत्ति क्या होगा? मैं गलत बोल रहा हूं? बोलिए कोई, हमारे बात में क्या दोष है? हम बांटना होगा तीन शब्द को, तो कृष्ण अनु एक साथ रखेंगे और सीलनम को एक साथ, तब किसी को कुछ आपत्ति है इसमें? बोलिए हाँ नहीं, इस नो नहीं, तब तो झगड़ा हुआ ना। आप लोग कृष्ण को अलग करेंगे अनुशीलनम को एक साथ, और कोई ग्रुप कृष्णानु को एक साथ रखेगा और शीलनम को एक साथ, तो दोनों पर सही ही है, तब अर्थ कैसे होगा? आप लोग यह कह रहे हैं कि कृष्ण अनुशीलनम, तो ठीक अनुशीलन का अर्थ क्या होगा, बोलिए कोई आए? हाँ अभ्यास, तो शीलन का भी अभ्यास हो जाएगा, अनुशीलन का आचार्य का अनु मतलब किसी के पीछे अभ्यास करना, इसको अनुशीलन कहेंगे। आचार्य के चरण चिन्ह का अनुशीलन करते हुए अभ्यास करना, यह अनुशीलन है। ठीक, किसका अभ्यास करना है, किसे वो तो अनुसरण करना है, कृष्ण, कृष्ण का अनुशीलन। लेकिन अब एक समस्या है कि कृष्ण का क्या अर्थ है? आप लोगों के अर्थ के अनुसार पहले मैं चल रहा हूं, कृष्ण अनुशीलन, आचार्य का चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए कृष्ण का अभ्यास करना, उससे अपने उनका सेवन करना, तो यह भक्ति है। और कृष्ण का क्या अर्थ है? हाँ, कोई कोई भ्रम हो सकता है कि कृष्ण मतलब जो वृंदावन मथुरा में अवतार लिए, लेकिन अयोध्या में जो अवतार लिए तो उनका अनुशीलन करेंगे तो भक्ति नहीं है। कृष्ण शब्द से यहां ग्रहण किया जाएगा सारे भगवत स्वरूप को। जो नृसिंह देव की आरती कर रहा है वो भी भक्ति ही है ना, तो कृष्ण से सारे भगवत स्वरूप को ग्रहण किया जाएगा। अनुशीलन का अर्थ है कि आचार्य का पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए अभ्यास कर रहे, चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ये तुलसी जी की रोज पूजा करते हैं तो इसको भक्ति के अंतर्गत रखेंगे कि नहीं? अब कैसे, ये कृष्ण है, अरे तदीय वस्तु है, तो इसमें तो आप कृष्ण कहे और कृष्ण की स्थापना कर दिए कि भगवत स्वरूप, तो अब तदीय कहां से आ गया? आप अपने तरफ से ले रहे हैं ना, यहां कोई अवसर छोड़े? आए हाँ, अब आए, हाँ बोलो। अब ध्रुव कह रहा है कि अब वो कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, अब कृष्ण अनु, कृष्ण अनु तो उन्हें जो कृष्ण के पीछे हैं, कृष्ण से रिलेटेड है, तो वह भी भक्ति के अंतर्गत आ जाते। गुरु हैं, तुलसी हैं, वैष्णव हैं, तो इनकी भी सेवा करते हैं, तो वह भी भक्ति ही है ना। तो इसी से अब कॉम्बिनेशन की बात है। अब कृष्ण अनुशीलनम कोई कह रहा है, कोई कृष्णानुशीलनम, तो अभी झगड़ा का समाधान कैसे करेंगे कि भाई अनु को कृष्ण के साथ लिया जाए कि सिलनम के साथ? अनंत कोई है समाधान? दोनों को ले लेंगे। आप व्यवहार में देखते हैं, गरीब घर है, हम लोगों को तो अनुभव है, बरसात का दिन है, गेस्ट आ गए, दीपक एक, अब उसमें गृहिणी को भोजन निकालना भी है, इधर खिलाना भी है, अब एक दीपक से क्या करेंगे तो दोनों जगह काम हो जाएगा। देहली पर रख देंगे, किसी को है अनुभव? दरवाजे पर रख दिए तो भीतर का भी काम चल गया, बाहर का भी। तो उसी तरह अब अनु तो बीच में है ना, तो अपना अर्थ सीलनम के साथ भी देगा और कृष्ण के साथ भी। समझ रहे हैं गणित? तो ये सीलनम के साथ, ये तो इस अर्थ में ले लेंगे। एक और हम सवाल पूछ रहे हैं, कौआ को आंख कितना होता है? एक दो एक दो कौन एक के पक्ष में है? हाथ उठाइए। एक ही होता है। और दो के पक्ष में कौन है? देखिए, उसको आंख एक होता है लेकिन सॉकेट दो होता है, और दोनों सॉकेट में वो आंख फिट हो सकता है। सॉकेट यहाँ दो लगा दीजिए, बल्ब एक है, तो कभी इधर लगा देंगे कभी इधर, बल्ब तो फिट हो जाएगा ना। तो कौवे को आंख तो एक होता है, लेकिन गोलक, हम लोगों का तो गोलक भी दो है, लेकिन वो इतना दक्ष है कि पट से इधर भी ला देता है, पट से उधर भी ला देता है। तो संस्कृत में कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं कि श्लोक में एक जगह आया है लेकिन उसका प्रयोग कई एक जगह होगा, इसको काकाक्ष न्याय कहते हैं। तब इस दृष्टि से, अतः बीच में है तो कृष्णानु और अनुशीलनम, तो अब कोई झगड़ा नहीं है ना। तो जैसे व्यापक परिभाषा दी गई है कि दोनों अर्थ है, कृष्ण और अनु, कृष्ण और उनसे संबंधित चीज भी। ये जो धाम है इसका अनुशीलन करना यह भी भक्ति है, गुरु की सेवा करना यह भी भक्ति है। तो ये सब आएगा इसी परिभाषा से ना, बाहर से नहीं लिया गया है। तो क्यों ऐसा लिया रहा है कि कृष्ण अनु सीलनम, कृष्ण और उससे जो संबंधित हैं तो उनका सीलन ये भक्ति है। तो ये तो कृष्ण और अनुशीलन, ये झगड़ा खत्म हुआ। ये सीलनम का अर्थ क्या होता है? सीलनम मतलब चेष्टा, सीलनम का अर्थ है चेष्टा। तो चेष्टा, चेष्टा दो इसका अर्थ है, पूरा इसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो चेष्टा रूप और भाव रूप, या चेष्टा का ही एक भेद भाव भी हो जाता है। चेष्टा मतलब, चेष्टा को थोड़ा सा कोई बतलावे, चेष्टा किसको कहते हैं? हाँ, टू अटेम्प्ट, टू प्रयास, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं तो इसको चेष्टा कहेंगे। तो चेष्टा के दो प्रवृत्ति होती है, कुछ बचने के लिए चेष्टा करते हैं और कुछ ग्रहण करने के लिए। चेष्टा तो दोनों तरह से होता है ना, शरीर से भी चेष्टा करते हैं, मन से भी चेष्टा करते हैं, वाणी से भी चेष्टा करते हैं। तो चेष्टा का सीलनम का बहुत व्यापक रेंज हो जाता है। अब इसको निकालो, ये भक्ति की परिभाषा है, इसके एक एक शब्द को एकदम स्पष्ट रूप से समझना है। और अब प्रश्न के लिए 100% छूट है आपको, खास करके इस श्लोक में किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई है तो कभी भी पूछ सकते हैं। श्लोक फिर से बोलिए, फिर से श्लोक बोलिए। तो इसको सब लोग लिख लीजिएगा, लेकिन जब हाजिरी होने लगेगा उस समय लिखिएगा, उतना में कुछ श्लोक के शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, तो अनुशीलनम, ये जो सीनलम शब्द है तो चेष्टा रूप भाव रूप कह सकते हैं, चेष्टा है तो इसका तीन स्तर है। पहले तो दो स्तर है, प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक, या तीन स्तर करेंगे तो तीनों का दो दो भेद हो जाएगा, कायिक वाचिक मानसिक। तो कायिक कृष्णानुशीलन का कोई एक उदाहरण बतलाइए। आए आरती करना, झाड़ू लगाना, हाँ भोग बनाना, ठीक। और वाचिक आए जप करना, ये सुनना भी वाचिक ही है, बोलना कथा बोलना वाचिक है ना। और मानसिक चेष्टा का उदाहरण स्मरण करना, ठीक। स्मरण करना और भी कुछ, संकल्प करना, ठीक। और ये मानसिक को अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, थिंकिंग विलिंग फीलिंग। तो ये फीलिंग ही भाव रूप चला जाता है। तो ऐसे एक तरफ का है तो वही अंग्रेजी का शब्द है, बहुत अच्छा है। अब थिंकिंग विलिंग फीलिंग, अब इसके उदाहरण दीजिए कोई। थिंकिंग, हाँ तो उदाहरण दीजिए। हाँ भक्ति शास्त्री की योजना बहुत दिन से कर रहे थे ना, तो मन ही मन कर रहे थे। अभी एक चेष्टा ही है, कभी कभी थोड़ा सा एक कठिनाई लगती है कि मन से चेष्टा, लेकिन मन से भी चेष्टा होता है ना। हम उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए कि कोई गणित सोल्व कर रहा है, तो पहले तो हाथ में कलम लिया है, कॉपी रखा है, तब तक कुछ देर के बाद छोड़ देता है, कॉपी भी रख दिया, कुछ नहीं है, और लेकिन कुछ ना कुछ चेष्टा कर रहा है, तब तक आ जाता है, फिर लिखने लगता है अनुभव ना। तो उसका चेष्टा नहीं रुका, चेष्टा चल रहा है, शरीर से छोड़ दिया, लिखने का चेष्टा खत्म कर दिया, लेकिन मन ही मन कुछ चेष्टा कर रहा है, कुछ कैलकुलेट कर रहा है। तो कैलकुलेट मन ही से कर रहा है, ये भी चेष्टा ही है ना। और तो थिंकिंग विलिंग, स्प्रिया होना, कुछ इच्छा करना, तो अपने स्प्रिया को शब्द से भी कभी कभी व्यक्त करते हैं। रूप रघुनाथ पद है वे आकुति, कबे हम बुझब जुगल प्रीति। तो स्प्रिया ही है ना, ये विलिंग है, और एक फीलिंग है। पर फीलिंग को ही भेद किया गया प्रीति और विषाद। कुछ सोच करके प्रसन्न हो जाते हैं और कुछ सोच करके उदास हो जाते हैं। तो ये सब अनुशीलनम के, या और शॉर्ट करके कहेंगे तो शीलनम के अंतर्गत है। और शीलनम का क्या दो रूप है, कौन कौन, चेष्टा रूप और भाव रूप। चेष्टा के भी तीन स्तर है, कायिक वाच मानसिक, और उसके भी दो फेज है, प्रवृत्त्यात्मक और निवृत्त्यात्मक। और भाव रूप के चेष्टा के दो फेज हैं, प्रीति और विषाद। तो यह सीलनम का अर्थ है, कृष्णानुशील अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना यह भक्ति है। यह अनुकूल भाव से, भाव प्रतिकूल है तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो भक्ति के लिए यह आवश्यक है कि भाव अनुकूल रहे। जब तक भाव अनुकूल नहीं है तो कितना हो चिंतन करते रहिए उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। कंस जितना कृष्ण का चिंतन करता था शायद ही दूसरे लोग करते होंगे, लेकिन उसके चिंतन को भक्ति नहीं कहा जाए। वो तो कृष्ण को मारने के लिए हमेशा चिंतित था, उसको उसका भाव प्रतिकूल था, तो इसलिए उसको भक्ति नहीं कहा जा सकता। तो इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है कि भक्ति के लिए अनुकूल्य का रहना जरूरी है। उदाहरण है कि जैसे कोई कहे तो गनमैन को बुलाओ, गनमैन को बुलाओ, तो गनमैन को बुलाया जा रहा है तो आदमी आएगा तो गन रह करके आएगा कि ले करके आएगा? लेकर के आएगा, लेकर के आएगा ना। तो जैसे वो ले करके आएगा उसी तरह अनुकूल्य तो भक्ति के लिए आवश्यक है। लेकिन अब कोई कह दे कि गन मैन को खिलाओ, तब गन को भी खिलाएगा? कोई जरूरी नहीं है। तो इस अर्थ में अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम नहीं है, खिलाने का जो अर्थ है उस अर्थ में नहीं। गन मैन को बुलाओ, गन मैन आवे, जैसे गन मैन को बुलाया जा रहा है तो गन को छोड़ करके नहीं बुलाया जा रहा है। तो वैसे ये अनुकूल्यम का अभियोज्य संबंध भक्ति के साथ, गन मैन को खिलाओ तो इसमें गन रख भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि गन को लिए रहेगा। तो इस ढंग के ये नहीं है। इसको समझाया गया है कि यह उपलक्षण नहीं है, विशेषण है। जो हो अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन यह भक्ति है। लेकिन यहां लक्षण किस भक्ति का दिया जा रहा है? उत्तम आया, उत्तमा भक्ति के। तो उत्तमा भक्ति के लिए दो चीज की और जरूरत है, वो क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। भक्ति के लिए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उत्तमा भक्ति के लिए आवश्यक है। पहला क्या चीज है? अन्याभिलाषिता शून्यम। कितना शब्द है इसमें? तीन, अन्य अभिलाषिता शून्य। वो अभिलाषिता शून्यम नहीं कह रहे, अन्य अभिलाषिता। अभिलाषिता भक्ति का प्राण है। जब तक मन में अभिलाषा नहीं है तो भक्ति तो ऊर्जिता नहीं होगी, शक्तिशाली नहीं होगी। तो अभिलाषा खूब होना चाहिए मन, लेकिन अन्य अभिलाषा नहीं, भक्ति की ही अभिलाषा। लेकिन एक विशेष चीज ध्यान देने की है कि अभिलाषा शब्द नहीं दे रहे हैं, क्या शब्द दे रहे हैं? अभिलाषिता। तो अभिलाषा के जगह पर अभिलाषिता शब्द क्यों दे रहे हैं? इसमें क्या अंतर है? अभिलाषा और अभिलाषिता में कौन बोलेगा? केशव, अभिलाषा और अभिलाषिता में क्या अंतर है? अच्छा, और अभिलाषा बने माधव क्या सुशील, अभिलाषिता और अभिलाषा में कुछ अंतर कर सकते हो? हाँ बोलो मुख्यतः, माइक ले लो। अभिलाषा के वृत्ति को, अभिलाषा के आदत को अभिलाषिता कहेंगे। अभिलाषा के प्रवृत्ति को, स्वभाव को अभिलाषिता कहेंगे। है नहीं, स्वभाव समझ रहे हैं ना? अब स्वभाव का त्याग करना कठिन होता है, तो अभिलाषिता का अर्थ है अभिलाषा की वृत्ति, अभिलाषा का स्वभाव। तो अभिलाषा तो खूब होना चाहिए, स्वभाव भी बन जाना चाहिए, लेकिन अन्य अभिलाषा का स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो अभिलाषा के बजाय अभिलाषिता शब्द देने का अर्थ है कि कोई आकस्मिक रूप से अभिलाषा मन में आ भी गई तो उससे उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं है। लेकिन अब रोज रोज वही अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, जय जगदीश हरे और जो हो, तो वो अभिलाषिता है। लेकिन कदाचित खास करके कोई बहुत भारी संकट है, प्राण पर खतरा है, अपने प्राण पर या दूसरे के प्राण पर, और उस समय अभिलाषा आ जा रही है, तो इससे नहीं कहा जाएगा कि तो अभिलाषा कर रहे उत्तमा भक्ति तो नहीं है। इसी से अभिलाषा के बजाय शब्द दे रहे हैं अभिलाषिता। आकस्मिक रूप से इमरजेंसी केस में कुछ मन में कामना भी आ जाए तो उससे उत्तमा भक्ति की क्षति नहीं है। समझ गए अभिलाषिता का क्या आशय है? ये अभिलाषा की वृत्ति का निषेध कर रहे हैं, अन्य अभिलाषा के वृत्ति का। तो इसमें ध्वनित है कि आकस्मिक कोई अभिलाषा है तो उसको उत्तमा भक्ति सह सकता है। और दूसरा क्या है, ज्ञान कर्माद्य अनावृत। ज्ञान कर्म आदि अनावृत, यहां शून्य नहीं कह रहे हैं। जैसे अभिलाषिता के विषय में क्या शब्द है, शून्य, वो शून्य होना चाहिए। लेकिन ज्ञान कर्म और आदि मतलब योग सांख्य, और इसको कह रहे हैं कि इससे आवृत नहीं होना चाहिए, अनावृत। मतलब कुछ कुछ अवकाश इसके लिए भी है, कुछ कुछ जगह है इसके लिए। थोड़ा सा कर्म का भी जगह है, थोड़ा ज्ञान का भी जगह है, और योग के लिए तो जरूर जगह है। प्राणायाम तो करना ही चाहिए थोड़ा सा, लेकिन अब यह नहीं कि मंगला आरती के समय भी कोई कोई कर्म ऐसा है कि समाज के लिए बहुत आवश्यक है, तो भक्ति में उसको अंगीकार भी कर लिया जाता है तो उससे उत्तमा भक्ति पर क्षति नहीं। जैसे श्राद्ध क्रिया, अब श्राद्ध क्रिया समाज के लिए बहुत आवश्यक है तो भक्त लोग भी इसको करते हैं, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उत्तमा भक्ति के स्तर के नहीं है। और ज्ञान से समझना चाहिए कि भगवान के विषय में जो ज्ञान है वह भक्ति का विरोधी नहीं है। जो निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान अर्जन करते हैं वह भक्ति का विरोधी है। और इसी तरह जैसे योग इत्यादि है तो थोड़ा सा उसका अंश रह सकता है, आसन प्राणायाम ये भक्ति का विरोधी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब उसी वही मुख्य चीज हो जाए, भक्ति गौर हो जाए। तो इस अर्थ में कह रहे हैं कि अनावृत। तब भक्ति की परिभाषा एक लिख लीजिए, आपके ग्रंथ में भी है लेकिन फिर भी एक लिख लीजिए, अन्याभिलाषिता से शून्य, ये लिख लीजिए सब लोग, आप लोगों को जरूरत पर। अच्छा अनुवाद में तो होगा ही, अनुवाद तो है ही है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, ये दूसरे जगह से, अन्याभिलाषिता से शून्य, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, अनावृत, आवृत का उल्टा अनावृत, अनुकूल्य से श्री कृष्णानुशीलन उत्तमा, अनुकूल्य से श्री कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहते हैं। अन्याभिलाषिता से शून्य, ज्ञान कर्मादि के द्वारा अनावृत, अनुकूल्य से श्री कृष्णानुशीलन को उत्तमा भक्ति कहते हैं। यह उत्तमा भक्ति की परिभाषा है। अभी इस पर और विचार करेंगे, इस पर कुछ एक्सरसाइज किया जाएगा। तो समय तो पूरा हो गया, अब इसको दूसरे दिन करेंगे, लेकिन आज इतना एक काम कर लीजिए, श्लोक सबके सामने है, इसमें गिनती कीजिए कि कितना शब्द है अन्याभिला, ये छोड़ दीजिए, हम लोग अब दूसरे दिन ही गिनती करेंगे, टाइम पूरा हुआ। चलिए अटेंडेंस बोल दिया, और इसको लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है।